नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र की महाशक्ति बनाने के लिए राज्यों से विनिर्माण को बढ़ावा देने, व्यापार सुगम बनाने और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी और जमशेदपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे से दृश्यता बाधित, हवाई उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन या रद्द होने का अलर्ट जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में शांति वार्ता की। श्री ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात की। अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की निंदा की और महिला क्रिकेट में भारत ने चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 30 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सेवा क्षेत्र को मजबूती देकर भारत को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ करेगा। उन्होंने प्रत्येक राज्य से इसे शीर्ष प्राथमिकता देकर वैश्विक कंपनियों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन कल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 दिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में कल उन्होंने भारत की जनसंख्या की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की लगभग 70% आबादी कार्यशील वर्ग में है। इससे आर्थिक प्रगति के लिए विशिष्ट अवसर उपलब्ध हैं। इससे विकसित भारत की ओर देश की यात्रा को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब युवा आबादी की क्षमता से सुधार एक्सप्रेस पर सवार है। इस जनसंख्या की उपलब्धि को और अधिक सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। विकसित भारत को गुणवत्ता और उत्कृष्टता का पर्याय बताते हुए श्री मोदी ने सभी हितधारकों और औसत परिणामों से आगे निकलने का आग्रह किया। सुशासन, सेवा और विनिर्माण की गुणवत्ता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया लेबल को उत्कृष्टता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बनाना होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। कल शाम वे रांची पहुंची। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। यह समारोह अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ और दिशोम जाहिर थान समिति द्वारा संयुक्त रूप से पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में शुरू किए गए ओल्ड चिकी आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राज्यीय जन संस्कृति समागम समारोह कार्तिक जत्रा एक अंतर्राज्यीय लोक सांस्कृतिक सभा को संबोधित करने के लिए गुमला का दौरा करेंगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज पुदुचेरी में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आवासीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे और कंबन कलई रंगन में लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपेंगे। वे ईश्वरन कॉयल स्ट्रीट में भरतियार स्मारक पर महाकवि सुब्रमण्य भरतियार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज असम के नागांव जिले के बोरदुवा में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान बताद्रवा थान में आध्यात्मिक स्थल की पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले वे गुवाहाटी में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र में अवैध विदेशियों के विरुद्ध असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तेलंगाना विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल बंटवारे के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर सत्र के दौरान चर्चा कराने का पहले ही उल्लेख किया था। रेल मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रित प्रयासों, नवाचार और स्वदेशीकरण से भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय नेटवर्क में बदल रहा है। रेलवे ने कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
272 किलोमीटर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हुआ। इसमें 36 बड़ी सुरंगें और 943 पुल बनाए गए हैं, जो एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके अलावा मिजोरम में 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरंग ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन भी इसी वर्ष किया गया, जिसके चलते आइजोल पहली बार भारत के रेल नक्शे पर आया। भारतीय रेलवे रेल नेटवर्क में क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए कई बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसके साथ मुख्य केंद्र में पारंपरिक नेटवर्क पर भीड़ कम करने के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर शुरू करना और सरकारी निवेश को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है। अनंत कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इस वर्ष कई नीतियों को कार्यरूप दिया गया और इनके माध्यम से प्रगति को साकार बनाया गया। आज विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में हम रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की चर्चा कर रहे हैं।
इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और स्पष्ट रूप से संगठित किया है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ 5 सख्त सिद्धांत तय किए हैं, जिसमें आतंकी हमलों का कड़ा जवाब, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहनशीलता, आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई फर्क न करना तथा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता न करना जैसे सिद्धांत शामिल हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इस संकल्प का सबसे स्पष्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। इस वर्ष 7 मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पिछले 5 दशकों में अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की।
जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया।
इस वर्ष देश की रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि देखी गई, जिसके अंतर्गत रक्षा उत्पादन 1,54,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया और वहीं 2025-26 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। इसी के साथ 4,30,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर, नौसेना के लिए राफेल एम विमान, उन्नत टॉर्पीडो और निगरानी प्रणालियां शामिल हैं। इस वर्ष कई स्वदेशी उपलब्धियां भी हासिल हुई, जिनमें वॉरशिप्स और पनडुब्बियों का कमीशनिंग, स्टेल्थ फ्रिगेट्स की तैनाती, अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित सफल परीक्षण और भारत में बने AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू होना शामिल है। ईशानी और आरजू के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की वार्षिक बैठक में बांग्लादेश और नेपाल के उलेमा और मुस्लिम विद्वान भी शामिल हुए। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया जाना चाहिए। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में इस महीने कथित ईश निंदा के आरोप में दीपूचंद्र दास को जिंदा जला दिया गया था। 24 दिसंबर को अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भी राजबाड़ी में भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस बीच बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस ने कहा है कि इस वर्ष जून से दिसंबर के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ ईश निंदा आरोपों की 71 घटनाएं सामने आईं। मानवाधिकार संगठन ने चांदपुर, चट्टोग्राम, दिनाजपुर, लालमोनिरहाट, सुनामगंज, तंगेल और सिलहट सहित 30 से ज्यादा जिलों में ऐसे मामले दर्ज किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस के साथ जारी युद्ध समाप्त करने की शांति योजना पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक को अत्यंत सफल बताया और कहा कि शांति वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध समाप्त करना चाहते हैं।
हमारी बैठक बहुत शानदार रही। हमने कई विषयों पर चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि हम युद्ध समाप्त करने के बहुत निकट आ रहे
हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि विचार विमर्श को अंतिम रूप देने के लिए जल्द से जल्द बातचीत पर भी सहमति बनी है। दिल्ली और नोएडा में आज घने कोहरे से दृश्यता बाधित है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कोहरे को देखते हुए अलर्ट और यात्रा परामर्श जारी किया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी फ्लाइट की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। एयर इंडिया ने अपनी सेवाओं में संभावित रुकावट के बारे में चेतावनी जारी की है। स्पाइस जेट ने भी परामर्श में कहा है कि दिल्ली से जाने और आने वाली उड़ानें खराब दृश्यता के कारण बाधित हो सकती हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता आज सुबह गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत ने कल तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग उद्घाटन मैच में एसजी पाइपर्स ने रांची रॉयल्स को 2-0 से हरा दिया। रांची में कल एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर और टेरेसा वियाना ने गोल किए। भारत के अर्जुन एरगेसी और कुनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रैपिड मुकाबले में अपने अपने वर्ग के कांस्य पदक जीते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद जागृति। मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है भारत। पंजाब केसरी ने नौसैनिक पनडुब्बी पर राष्ट्रपति मुर्मू की ऐतिहासिक यात्रा को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कबूलनामा प्रथम पृष्ठ पर दिया है। बंकर में छिपने की आ गई थी नौबत। जनसत्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डार का बयान दिया है। नूर खान सैन्य अड्डे को हुआ था भारी नुकसान। हिंदुस्तान ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संदेश दिया है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा भारत। कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री की चिंता के साथ नवभारत टाइम्स ने JNU का एक शोध प्रकाशित किया है। दिल्ली की हवा में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता। दैनिक भास्कर की पॉजिटिव न्यूज है, गांव में सायरन बजते ही पढ़ने बैठ जाते हैं बच्चे। महाराष्ट्र के बीड जिले के नागपुर गांव में गैजेट्स और टीवी से चिपके रहने वाले बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है।
और आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र की महाशक्ति बनाने के लिए राज्यों से विनिर्माण को बढ़ावा देने, व्यापार सुगम बनाने और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में शांति वार्ता की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।